लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे अत्याचार और उत्पीड़न निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यातनाओं के उन्मूलन को सुनिश्चित करने हेतु ठोस रूप से प्रतिबद्ध रहे और पीड़ितों एवं उनके परिवारों को सहायता की गारंटी प्रदान करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, एक सच्चे प्रेम की परख अति सुंदर और एक मूल्यवान गुण उसका संपूर्ण समर्पण है, जहां हम प्रेमी या प्रेमिका को दूसरे के लिए स्वार्थहीन भावना से पूर्ण रूपेण एक आहुति स्वरूप देखते हैं। प्रेम में समर्पण को हम उस जलती हुई मोमबत्ती की उपमा दे सकते हैं, जो अपनी चिंता और परवाह किए बिना अपने को इसलिए जलने देता या जला देता है जिससे दूसरों को प्रकाश मिल सके। वही मोमबत्ती के जलते प्रकाश का महत्व वही जानता है जो अपने को घोर अंधकार में पाता है। मानव जीवन में इस भांति प्रेम और प्रेम में हमारा सच्चा समर्पण हमें अपने जीवन के अंधकार में और मुसीबत के क्षणों में भी सच्ची खुशहाली में आगे बढ़ने को प्रेरित करता है, क्योंकि यह हमारे अंतरतम में जलने वाली वह लौ बनती है जो जिंदगी की हर नकारात्मक बात को हमसे दूर करती, जो हमारे जीवन की राह में अंधेरा बनकर आता है। श्रोताओं, पेंतेकोस्त के बाद का रविवार कलिस्से के पूजन विधि कालचक्र में पवित्र त्रित्वमय का महोत्सव स्वरूप मनाया जाता है। आइए हम पवित्रतम त्रित्वमय ईश्वर के महोत्सव आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सुसमाचार पाठ का श्रवण करते हुए अपने में यह पूछें कि क्या हमने ईश्वर के सच्चे प्रेम का सच्चा एहसास अपने जीवन में किया है? क्या ईश्वरीय प्रेम की सच्ची अनुभूति हमें अपने जीवन को उत्साह और जोश में जीने को मदद करती है? ईश्वर के प्रेम से ओतप्रोत क्या हम दूसरों के लिए प्रेम का एक माध्यम बनते हैं और उन्हें एक अच्छा जीवन जीने को प्रोत्साहित करते हैं?
ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौटे पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता।
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर जीवनदायी वचन हमें अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम को सदैव गहराई से जानने और समझने की शक्ति प्रदान करे, जिससे हम उस प्रेम से प्रेरित होकर दूसरों के लिए नए जीवन का माध्यम बन सकें, जिसकी बुलाहट मुक्तिदाता पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हम सबों को प्रदान की है। श्रोताओं, निर्गमन ग्रंथ से लिए गए आज के पहले पाठ में हम मूसा और याहवे के बीच एक मिलन की चर्चा सुनते हैं। मूसा 10 आज्ञाओं की पाठियों को लेकर सिनाई पर्वत में याहवे से मिलने जाते, जैसे कि उन्हें आज्ञा दी जाती है। इस मिलन में नबी मूसा चुनी हुई प्रजा के लिए ईश्वर से निवेदन करते हुए उनके पापों और गुनाहों को क्षमा करने की अर्जी विनती करते हैं। नबी मूसा के पुकारने पर याहवे अपने को बादलों के रूप में यह कहते हुए प्रकट करते हैं, प्रभु देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वह हजारों पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। ईश्वर के इन सारे गुणों को हम एक दिव्य गुण में संक्षिप्त करते हुए कह सकते हैं, ईश्वर प्रेम के स्रोत हैं। अतः वे हमारे संग अपने प्रेम के कारण विभिन्न रूपों में मिलने आते और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। श्रोताओं, पहले पाठ में हमारे लिए दो मुख्य बातें प्रकट होती हैं। पहला, अपने लोगों के लिए नबी मूसा की मध्यस्थता और दूसरा, ईश्वर का प्रेम। नबी मूसा इसराइली प्रजा की अगुवाई करते और ईश्वर के सम्मुख उपस्थित होते हुए उनके लिए दुहाई देते हैं। यह मानवीय जीवन के एक अहम आयाम को व्यक्त करता है, जहां हम अपने को एक दूसरे से सदैव एकता में संयुक्त पाते हैं, जो मानवीय जीवन के सार को व्यक्त करता है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, बल्कि हम सदैव किसी न किसी से सहायता की मांग करते हैं। यह हमारे जीवन की निर्भरता को व्यक्त करता है, जहां हम अपने को न केवल मानव बल्कि सारी पृथ्वी, वनस्पति जगत और उसमें विचरण करने वाले हर प्राणी से जुड़ा हुआ पाते हैं, जिसे ईश्वर ने हमारे लिए बनाया और दिया है। वहीं दूसरा पहलू, जहां ईश्वर को हम प्रेम के रूप में पाते हैं, जो हमें विभिन्न रूपों में प्रेम करते और अपने प्रेम का प्रत्युत्तर हममें से हर जन से प्रेम की मांग करते हैं। अपने प्रेम के कारण ईश्वर हमारे प्रति सत्य प्रतिज्ञा बने रहते हैं। वे हमारी असंख्य गलतियों और पापों की स्थिति में भी हमें अपने से दूर नहीं करते और ना ही वे हमारे पाप गुनाहों का हिसाब रखते हैं। इस भांति जिस तरह उन्होंने हमें प्रेम किया है, वे हमें भी उसी भांति अपने प्रिय जनों और दूसरों को प्रेम करने का आह्वान करते हैं, जिसे हमारे लिए कुरुंथियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ व्यक्त करता है। आप पूर्ण बने, एक मत रहें, शांति बनाए रखें और प्रेम तथा शांति का ईश्वर आपके साथ रहेगा। श्रोताओं, आज के दोनों पाठों में हम इस तरह पवित्रतम त्रित्वमय ईश्वर के महोत्सव से अपने को संयुक्त करते और उसके सार पर चिंतन करने का निमंत्रण पाते हैं, जो और कुछ नहीं बल्कि सारी मानव जाति के लिए दिव्य प्रेम के अथाह स्रोत हैं। त्रित्वमय ईश्वर जो हमारे लिए एक रहस्य है, जहां हम एक ईश्वर में तीन जनों, पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर की चर्चा करते हैं, अपने में अलग अलग होते हुए भी सदैव एकता और अटूट प्रेम के संबंध में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ईश्वर जो प्रेम है, जो संपूर्ण एकता में हमेशा बने रहते हैं, हमारे लिए अपने बेटे यीशु ख्रिस्त को दुनिया में भेजते और अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं, जिससे हम उनके द्वारा परिपूर्ण जीवन को प्राप्त कर सकें। पिता ने दुनिया की सृष्टि की और उसे अपनी आशीषों से भर दिया, और इतना ही नहीं, अपने सृष्ट मानव के पाप में गिरकर मृत्यु के अधिकारी होने पर उन्होंने पाप और मृत्यु से बचाने हेतु अपने बेटे यीशु ख्रिस्त को हमारी तरह मानव बनाकर दुनिया में भेजा। वे हमें पिता के करुणामय प्रेम को प्रकट करते और अपने क्रूस स्मरण द्वारा स्वर्ग का द्वार सारी मानवता के लिए खोलते हैं। वे हमारे पापों के लिए सजा और हमें दोषी ठहराने नहीं आए, बल्कि हमारे पापों में रहने पर भी हमें प्रेम में आलिंगन करने और पिता के प्रेम का मार्ग बतलाते हुए जीवन के रहस्यों को बतलाया। इस भांति संपूर्ण जीवन की सौगात हमें यीशु ख्रिस्त में तब मिलती है, जब हम उन्हें विश्वास में स्वीकारते और जीवनदाता के रूप में अपने जीवन के कार्यों द्वारा उन्हें प्रभु घोषित करते हैं। और यह कार्य हमारी ओर से नहीं होता, बल्कि उस आत्मा के द्वारा होता है, जो हमें पिता की ओर से पुत्र में मिला है, जो हमारे मन और दिल को आलोकित करते हुए हमें यीशु ख्रिस्त के दिखलाए हुए मार्ग में चलने को प्रेरित करते हैं। आइए हम त्रित्व में ईश्वर से निवेदन करें, विनय करें कि वे हमें जीवन के प्रेम में रहस्य को जानने और समझने में मदद करें, जिससे हम जीवन के उस सार को दूसरों के संग बांट सकें जो सारी पृथ्वी को प्रेम में ज्योति से आलोकित करती है।
तू है दया का सागर पिता, भर दे मुझ में प्यार तेरा।
तू है दया का सागर पिता, भर दे मुझ में प्यार तेरा।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने भारत के ओडिशा राज्य में एक घातक रेल दुर्घटना में शामिल सभी लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की, जिसमें लगभग 300 लोग मारे गए और 900 से ज्यादा घायल हो गए हैं। भारत में प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष लेओपोल्डो जिरेली को राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन द्वारा संत पापा की ओर से शनिवार को भेजे गए एक तार संदेश में संत पापा ने त्रासदी के बाद अपनी प्रार्थना और आशीर्वाद दिया। संत पापा ने कहा, उन्हें ओडिशा राज्य में ट्रेन दुर्घटना के कारण हुए जनहानि के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ और इस त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपने आध्यात्मिक निकटता व्यक्त करते हैं। उन्होंने मृतकों की आत्माओं को सर्वशक्तिमान की प्रेमपूर्ण दया के सिपुर्द किया और अपनी हार्दिक संवेदना उन लोगों के लिए भेजा जो अपने प्रियजनों के लिए शोक मनाते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कई घायलों के लिए और आपातकालीन सेवा कर्मियों के प्रयासों के लिए प्रार्थना करते हुए अपना संदेश समाप्त किया। बालासोर के करीब 40 किलोमीटर आगे चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर एक मालगाड़ी से हो गई। टक्कर के बाद ट्रेन की 10 से 12 स्लीपर बोगी पटरी से उतर गई। शुक्रवार 2 जून को स्थानीय समय अनुसार शाम 7 बजे कोरोमंडल एक्सप्रेस 127 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। ओडिशा के बालासोर जिले के बहानागा बाजार स्टेशन के पास उसकी टक्कर मालगाड़ी से हो गई। रेलवे के सिग्नल कंट्रोल रूम से आ रही प्रारंभिक सूचना के अनुसार यह हादसा मानवीय भूल के कारण भी हो सकता है, क्योंकि शुरुआती जांच में सामने आया कि ट्रेन ने गलत पटरी बदली और लूप लाइन ले ली, जबकि उसे मेन ट्रैक पर जाना था। लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी। रेल मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराने के बाद मेन लाइन में डीरेल हो गई। उसके डब्बे मेल लाइन में पलट गए। कुछ ही मिनट बाद हावड़ा जाने वाली यशवंत नगर एक्सप्रेस दूसरी दिशा से आई और डिरेल कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गई। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 33 ट्रेनों को स्थगित कर दिया है और 36 ट्रेनों के रूट बदल दिए हैं। संत पापा फ्रांसिस इस गर्मी के अंत में मंगोलिया की प्रेरितिक यात्रा करेंगे। वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मतेओ ब्रूनी ने शनिवार को जारी एक बयान में इसकी आधिकारिक घोषणा की। श्री ब्रूनी ने कहा, मंगोलिया के राष्ट्रपति और देश के कलीसियाई अधिकारियों के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए संत पापा फ्रांसिस इस वर्ष 31 अगस्त से 4 सितंबर तक मंगोलिया की प्रेरितिक यात्रा करेंगे। पूर्वी एशियाई देश मंगोलिया की यात्रा करने से पहले संत पापा फ्रांसिस 1 से 6 अगस्त तक विश्व युवा दिवस के अवसर पर पुर्तगाल लौटेंगे, जहां वे देश की राजधानी लिस्बन में समय बिताएंगे और फातिमा की दूसरी यात्रा करेंगे। अगस्त 2022 में संत पापा फ्रांसिस ने कार्डिनल जोर्जो मोरेंगो को मंगोलिया की राजधानी उलान बटार का प्रेरितिक राजदूत बनाया, जो देश के पहले कार्डिनल हैं। पूरे मंगोलिया में 1,500 से भी कम कैथलिक हैं। उधर इटली के तीर्थयात्रियों के एक बड़े समूह ने शनिवार सुबह संत पापा फ्रांसिस से मुलाकात की, जो विश्व पत्र पाचेम तेरिस की 60वीं वर्षगांठ, संत पापा जॉन 23वें की मृत्यु और संत पापा जॉन पॉल षष्ठम के परमाध्यक्ष चुनाव को चिन्हित करने के लिए रोम की तीर्थ यात्रा पर हैं। तीर्थयात्री सोत्तो इल मोंते और कोंचेसो के शहरों से आते हैं, जो दोनों परमाध्यक्षों के जन्म स्थान हैं। अपने संबोधन में संत पापा फ्रांसिस ने याद किया कि उनके दो पूर्ववर्तियों ने दूसरी वाटिकन महासभा के साथ साथ आतंकवाद और शीत युद्ध सहित चुनौतियों का सामना करते हुए अपना जीवन बिताया। संत पापा ने इन दोनों परमाध्यक्षों के ख्रिस्तीय साक्ष्य के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया और तीर्थयात्रियों से उनके पवित्र पद चिन्हों पर चलने का आग्रह किया। संत पापा ने कहा, ये लोग महान चरवाहे बनने में सक्षम थे क्योंकि उन्हें अपने रास्ते में अच्छे साथी मिले, सुसमाचार के गवाह जिन्होंने उन्हें विश्वास में बढ़ने में मदद की, जब तक कि उनमें बुलाहट की रोशनी नहीं जगी। दोनों संत पापा के परिवारों ने कड़ी मेहनत के माध्यम से उनमें ठोस ख्रिस्तीय धर्म परायणता के प्रति प्रेम पैदा किया। संत पापा फ्रांसिस ने कहा, ईश्वर प्रयोगशाला में संत नहीं बनाते, वे उन्हें विशाल कार्य क्षेत्रों में बनाते हैं, जिनमें सभी का काम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में आधारशिला के रूप में मसीह के साथ एक व्यवस्थित और सही तरीके से निर्माण कार्य की देखभाल करना है। संत पापा ने संत पापा जॉन 23वें और संत पापा पॉल षष्ठम के साथ साथ उनके माता पिता और दादा दादी से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया, जिन्होंने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कड़ी मेहनत की थी। संत पापा ने ख्रिस्तीय समुदायों में स्वार्थ और विभाजन के खिलाफ भी चेतावनी दी, जो दुनिया के कई हिस्सों में विश्वासियों के लिए खतरा है। उधर मेक्सिकन धर्माध्यक्षों और संत पापा फ्रांसिस ने शुक्रवार 2 जून को वाटिकन में अपनी बैठक के दौरान प्रवासन की घटना, मेक्सिको की सामाजिक राजनीतिक स्थिति और देश में हिंसा के हालिया घटनाओं पर चर्चा की। यह अवसर देश के मध्य क्षेत्रों में मेक्सिकन धर्माध्यक्ष सम्मेलन के धर्माध्यक्षों के दूसरे समूह की अदली मीना यात्रा द्वारा प्रदान किया गया था। मेक्सिको के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल कार्लोस ने वाटिकन न्यूज को बातचीत के बारे में अधिक जानकारी दी। कार्डिनल ने कहा, मेक्सिको के सामने वही चुनौतियां हैं जो दुनिया के सामने हैं। उदाहरण के लिए, युग का परिवर्तन जिसने नई पीढ़ियों के लिए विश्वास को प्रसारित करना मुश्किल बना दिया है। उधर निकारागुआ के अधिकारियों ने देश में कैथलिक कलीसिया पर नवीनतम सरकार की कार्यवाही में धर्म बहनों को उनके द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक केंद्र से निकाल दिया और केंद्र को जब्त कर दिया। कैथलिक कलीसिया के खिलाफ निकारागुआ की सरकार द्वारा की गई नवीनतम घटना में संत लुइसा मैरीलेख के मिशनरी पुत्रियों द्वारा चलाए जा रहे संत सेबेस्टियन डी याली की तकनीकी संस्थान पर 30 मई को पुलिस ने कब्जा कर लिया और धर्म बहनों को परिसर से बाहर निकाल दिया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।